हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 9-7 समर ने अपनी तरफ से उसे पूरी बात समझा दी। ऋषभ ने कहा, लगता है काफी स्ट्रिक्ट हैं यहाँ के ओनर, क्योंकि अगर 10 मिनट बात कर लोगे तो ऐसा भी कोई तूफान नहीं आ जाएगा। ऋषभ की बात सुनकर समर ने जबरदस्ती मुस्कुराया और बोला, आई एम सॉरी बट अभी मुझे जाना होगा, बाय। इतना बोलकर समर वहां से आगे बढ़ गया। वो क्लासरूम के अंदर जाने ही वाला था कि तभी ऋषभ को एकदम से कुछ याद आया। वो भागते हुए वहां आया और बोला, एक मिनट रुको समर, मुझे कुछ और बात भी करनी थी तुमसे। इतना बोलते हुए ऋषभ ने समर का हाथ पकड़ लिया। समर ने उसके हाथ से अपना हाथ वापस लेते हुए कहा, ऋषभ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं अभी बात नहीं कर सकता, नेक्स्ट क्लास बस शुरू होने वाली है, इसलिए प्लीज हम बाद में कहीं और मिलकर बात करते हैं ना। ऋषभ ने विनती करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, कब और कहाँ मिलोगे ये बता दो बस, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ऋषभ की बात सुनकर समर ने बेबसी से उसकी तरफ देखा। वो समझ गया कि बिना मिले और बिना बात किए ऋषभ नहीं मानने वाला, इसलिए उसने कहा, ठीक है, शाम को 7 बजे के बाद मिलते हैं, तभी मेरी सारी क्लासेस ओवर होती हैं और मैं घर जाता हूँ। तो रास्ते में तुम्हारी ऑफिस बिल्डिंग पड़ती है ना, उसके पास एक कैफे है, हैप्पी डे कैफे, वहाँ पर ही मिलते हैं। ऋषभ को ऐसे किसी भी कैफे और जगह के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी वो तुरंत ही वहाँ मिलने के लिए तैयार हो गया। वो खुश होते हुए बोला, हाँ ठीक है, मैं 7 बजे से ही तुम्हारा वहाँ इंतजार करूँगा, भूलना नहीं और आ जाना। समर ने पुष्टि करते हुए कहा, ओके मैं आ जाऊँगा। ऋषभ खुश होते हुए बोला, ठीक है, वहीं मिलते हैं फिर। इतना बोलते हुए ऋषभ के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसे इतना खुश देखकर समर ने कन्फ्यूज्ड चेहरा बनाते हुए उसकी तरफ देखा और फिर सीधा अपनी क्लास में चला गया। समर को बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था कि ऋषभ उससे मिलने के लिए क्यों बोल रहा है और ऐसी कौन सी जरूरी बात करना चाहता है उससे मिलकर। ऐसे कन्फ्यूजन में वो अपनी क्लास के अंदर आ गया और सेकेंड बैच को पढ़ाने लगा। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ के चेहरे की खुशी और मुस्कुराहट बता रही थी कि उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है, लेकिन उससे मिलने के लिए वो काफी खुश और एक्साइटेड भी था। यही सब सोचते हुए वो वहां से बाहर आ गया और फिर अपनी कार में बैठकर सीधा अपनी ऑफिस बिल्डिंग में आ गया। ऋषभ अपनी ऑफिस बिल्डिंग में वापस तो आ गया, लेकिन वो ऊपर ऑफिस वाले फ्लोर में नहीं गया, क्योंकि अगर वो वहां जाता तो शिविका उससे पूछती कि वो वहां क्या कर रहा है और उसके हाथ पर चोट भी लगी हुई थी, इस वजह से उसे काफी कुछ सुनना पड़ता। समर की ही तरह शिविका भी उसे रेस्ट करने के लिए ही बोलती, इसलिए वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर ही बने VIP लाउंज एरिया में आकर बैठ गया। क्योंकि वो वहाँ का बॉस है और उसे सब अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए उसे किसी ने भी नहीं रोका टोका। ऋषभ VIP लाउंज एरिया में आकर बैठ गया और उसने अपने लिए कुछ स्नैक्स ऑर्डर कर लिए। VIP लाउंज एरिया का मिरर 2 ही था, इसलिए जहाँ ऋषभ बैठा था उसे लिफ्ट से बाहर निकलते और बिल्डिंग से बाहर जाने वाले आते जाते लोग नजर आ रहे थे, लेकिन वे सब नहीं देख सकते थे कि वहाँ VIP लाउंज एरिया में कौन बैठा हुआ है। और फिलहाल ऋषभ अपना नया मोबाइल फोन सेटअप करते हुए उस तरफ भी देख रहा था। उसके वहाँ आने के लगभग आधे घंटे बाद उसे शिविका वहाँ से निकलकर बाहर जाती हुई नजर आई। फिर ऋषभ ने वहाँ से झांक कर देखा तो शिविका इस वक्त एकदम अकेली थी, उसके आगे पीछे ऑफिस का कोई भी बिल्डिंग से बाहर नहीं निकला। शिविका की कार भी पहले ही बिल्डिंग के गेट पर रेडी खड़ी हुई थी। शिविका जाकर सीधा अपनी कार में बैठ गई। ऋषभ ने अपनी बहन को वहाँ से जाते हुए देखा और राहत की सांस ली। ऋषभ ने अपने आप से बात करते हुए कहा, चलो अच्छा हुआ अब दीदी यहाँ पर ऑफिस बिल्डिंग भी नहीं है, तो मुझे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आराम से शाम तक यहाँ पर वेट कर सकता हूँ और फिर टाइम होते ही वहाँ कैफे में चला जाऊँगा। इतना बोलते हुए ऋषभ ने अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखा और फिर सामने टेबल पर रखे हुए स्नैक्स एंजॉय करने लगा, क्योंकि उसे भूख लगी थी और वो घर से कुछ खा पीकर भी नहीं निकला था। दूसरी तरफ शिविका की कार में, करण के बोलने पर शिविका आज जल्दी ऑफिस से निकल गई थी, क्योंकि लगातार 2-3 दिनों के हेक्टिक शेड्यूल के बाद वो अब घर जाकर थोड़ा रेस्ट करना चाहती थी। पिछले कुछ दिनों में इतना कुछ हो गया था कि उसे खुद के लिए टाइम नहीं मिला था। इसके अलावा वो काव्या के साथ भी ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही थी और इस बात के लिए उसे काफी गिल्ट भी था। ये सब सोचते हुए शिविका अपनी कार में बैठी हुई थी, तभी उसका मोबाइल फोन रिंग हुआ। मोबाइल फोन रिंग होने की आवाज़ सुनकर शिविका अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने सीट में साइड पर रखा हुआ अपना मोबाइल फोन उठाकर स्क्रीन पर देखा। कॉलर आईडी में रुद्र का नाम लिखा हुआ था। उसका नाम देखकर उसने थोड़ा सा परेशान होता हुआ चेहरा बनाया। वो फिलहाल उसका कॉल रिसीव भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे रुद्र की कॉल रिसीव करनी पड़ी। उसने फोन ऑल रिसीव करके मोबाइल फोन अपने कान से लगाते हुए कहा, हाँ बोलो रुद्र, क्या हुआ? शिविका के ऐसे डायरेक्ट पूछने पर दूसरी तरफ से रुद्र की शिकायत करती हुई आवाज आई। क्या हुआ मतलब? जब तक कुछ नहीं हो मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकता क्या? और वैसे भी शिविका, तुम ना बहुत बदल गई हो पहले से। तुम्हें तो मेरी याद ही नहीं आती। खुद से तो कभी भी कॉल नहीं करती हो, और मैं कॉल करता भी हूँ तो ऐसे बात करती हो जैसे कि एहसान कर रही हो मुझ पर। उसके इस तरह शिकायत करने पर शिविका थोड़ी सी इरिटेट होते हुए बोली, क्या रुद्र, ऐसे बच्चों की तरह शिकायतें करने के लिए कॉल किया है क्या? और वैसे भी मैं वर्क रिलेटेड ना हो तो जल्दी किसी को भी कॉल नहीं करती। सिर्फ दिन में घर पर कॉल करके काव्या से ही बात कर लेती हूँ, वो भी किसी किसी दिन। इसलिए अगर तुम्हें बात करनी है ना तो खुद कॉल करो, मैं रिसीव कर लेती हूँ, यही एहसान मानो। उस पर रुद्र ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ बस बस पता है, बहुत ज्यादा बिजी हो। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा काम तो सिर्फ तुम्हें ही होता है, और बाकी हम तो सब बेकार आदमी हैं। वेल्ले, कोई काम नहीं होता मेरे पास, और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने एहसान किया मेरा कॉल रिसीव करके। ये बातें बोलते हुए अब तक रुद्र का मूड काफी खराब हो चुका था। शिविका को भी लगा कि शायद वो काफी ज्यादा रूड हो गई है, इसलिए शिविका ने थोड़ा सा सॉफ्ट टोन में बात संभालते हुए कहा, अच्छा ठीक है, सॉरी, कोई एहसान नहीं कर रही हूँ, लेकिन बोलो किस लिए कॉल किया था, कोई काम था क्या? शिविका के इस तरह नरमी से बोलते ही रुद्र तुरंत ही खुश हो गया और बोला, चलो ठीक है, तुम्हारा सॉरी एक्सेप्टेड, लेकिन ये क्या हमेशा फिर से काम की बात? यार बिना काम की बात नहीं कर सकती क्या अपने बेस्ट फ्रेंड से? रुद्र की बात पर शिविका ने फिर से पूछा, देखो तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना, इसलिए ही मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे पता है तुमने जरूर किसी वजह से कॉल किया है, इसलिए अब सीधे बताओ, बहुत बातें घुमा फिरा ली तुमने। रुद्र ने फिर से बात घुमा फिरा कर कहा, हाँ ठीक है बस वही आ रहा हूँ सीधे काम की बात पर। सुनो, वो तुम्हें तो याद होगा नहीं, कल तुमने क्या कहा था, इसीलिए मुझे फोन करना पड़ा। शिविका ने कन्फ्यूज होकर इस बारे में सोचते हुए उससे पूछा, क्या कहा था कल मैंने? ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा था जो याद दिलाने के लिए तुम्हें फोन करना पड़े। रुद्र एकदम से उसे पकड़ते हुए बोला, यू फॉरगॉट टोटली, आई न्यू इट।
शिविका को सच में बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था कि कल उसने रुद्र से ऐसा क्या बोला था। कल उसे रुद्र का फोन कॉल आया था ये तो उसे याद आ गया था, लेकिन ऐसी क्या अलग बात हुई थी वो याद नहीं आ रहा था। इसलिए उसने पूछा, ऐसा क्या भूल गई मैं, बता भी दो रुद्र, ठीक है? नहीं बताओगे ना, बस ऐसे ही ड्रामा करते रहोगे। ठीक है फिर, मैं कॉल डिस्कनेक्ट करती हूँ, बाय। शिविका के कॉल डिस्कनेक्ट करने की बात सुनकर रुद्र ने फिर से मुंह बनाते हुए कहा, अरे ये कौन सी बात होती है, बात बात पर धमकी देती हो या फिर एहसान जताती हो? और वैसे भी गलती तुम्हारी है ना, तुम ही भूल गई, अभी कल इस बारे में बात हुई थी हमारी, हम आज मिलने वाले थे ना। मिलने की बात सुनकर शिविका तुरंत ही मना करते हुए बोली, अरे नहीं रुद्र, आज तो नहीं हो पाएगा, प्लीज फिर कभी का प्लान कर लो, और मैं सच में इस बारे में बिल्कुल भूल गई थी इसलिए। रुद्र ने बच्चों की तरह एक रट लगाते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, तुमने कल भी यही बोला था कि तुम थक गई हुई हो और काम में बिजी हो, नहीं मिल सकती, इसलिए तुमने मुझसे आज मिलने का प्रॉमिस किया था, अब आज मैं और कुछ नहीं सुनने वाला, आज तुम्हें मुझसे मिलना ही होगा, इट्स फाइनल। उसके इस तरह से जिद करने पर शिविका उसे चुप कराती हुई बोली, स्टॉप इट रुद्र, क्या बच्चों की तरह जिद कर रहे हो, ऐसे जिद तो मेरी काव्या भी नहीं करती है, और तुम हो कि? रुद्र फिर से उसी तरह बोला, नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम बस हाँ करो, तुम आज अभी मुझसे मिल रही हो, मैं और कुछ नहीं जानता। शिविका ने आखिरकार हामी भरते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अभी क्या टाइम हुआ है? देखो 6:30, ठीक है 8 बजे मुझे घर से पिक करो। रुद्र अपनी ही धुन में बोले जा रहा था, लेकिन तभी उसे समझ आया कि शिविका मिलने के लिए तैयार हो गई है। वो खुश होते हुए बोला, नहीं नहीं, अच्छा अरे बात तुम मान गई, ठीक है जैसा तुम कहो, लेकिन बस 8 बजे रेडी रहना, उससे ज्यादा लेट मत करना, क्योंकि 8 बजे की टाइमिंग पहले ही थोड़ी लेट है, फिर तुम 10 बजे से पहले घर वापस जाने के लिए भी बोलोगी। शिविका ने पूछा, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन 1 मिनट ये तो बताओ आखिर हम कहाँ जाएंगे? रुद्र ने फिर से बात घुमाते हुए कहा, वो बस समझ लो सरप्राइज है एक तरह से, चलकर खुद ही देख लेना ना। शिविका ने बहुत ही इरिटेट आवाज में कहा, तुम और तुम्हारे सिली सरप्राइजेस रुद्र मुझे कभी भी एक्साइट नहीं करते। ठीक है, 8 बजे तक घर आ जाना, बाय। ओके बाय, रुद्र ने भी दूसरी तरफ से बोला, लेकिन तब तक वो कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। कॉल डिस्कनेक्ट करके शिविका ने मोबाइल फोन अपने माथे से लगा लिया और इस बारे में ही सोचने लगी। वो रुद्र के साथ जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब उसने प्रॉमिस कर दिया है तो उसे जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले घर पहुंचकर वो थोड़ा टाइम काव्या के साथ स्पेंड करना चाहती है, इसलिए उसने ड्राइवर से जल्दी घर चलने के लिए कहा। क्रमशः